This is All India Radio. In our special program, we now bring you a bilingual discussion on post-poll political development. The participants are Yashwant Deshmukh, psephologist, and Ashok Tandon, political analyst. K.V. Prasad, journalist, initiates and moderates the discussion.
The exit poll for the 17th Lok Sabha came out, and the figures, of course, clearly indicated the broad-based trend that the NDA under the Bharatiya Janata Party is going to retain power. Of course, the figures vary from a broad band from 260 to 360, and the numbers for the BJP plus-led NDA, and for the opposition, of course, a fragmented verdict. If you look at the broad brushstrokes, then we'll look at it. There are a lot of issues that crop up. But Mr. Yashwant Deshmukh, you have been associated very closely with this whole business going into poll and poll reading. Can you just give us a broad parameter? Because what we'll come to in terms of the other issues as we go along.
Well, I guess that if you look around all the estimates of different agencies, and when I say agencies, I am talking about those agencies particularly which have provided the vote share estimates. Because for the survey or the exit poll, the only thing that you can estimate is the vote share. Seat share is just an extrapolation of those vote share estimates. So all the serious agencies that I came across who have provided, their vote share estimate ranged between, for the NDA, between 40% to 43%. And for the UPA, it ranged somewhere between 27 to 30%. So between those ranges, which is perfectly explainable statistical ranges, because survey size allows you a plus minus 3% of statistical marginal of error, I believe the projection of the seat should be kept aside, because from our conservative estimate of the 287 to some hyper estimates of 360 plus, there are various shades of thing. And people say, how can you come up with so much of variation? It's very easy to understand that much of variation. You see, for example, in Delhi, if suppose any polling agency finds that BJP is leading in 5 seats and suppose like that, you can always allow them to have at least 1 seat of flexibility that, okay, 5 could be 4 or 5 could be 6. That means the range is 4 to 6. Now imagine India is such a big country that we have got 29 plus 1, 30 states, out of which even if you remove the 5 smallest of the small states, you look around the 25 states, you would end up giving them a margin of plus minus 25 seats in the same vote share estimate. This is why any conservative estimate, say for example of 275, could range anywhere between 250 to 300. Similarly, any conservative estimate of 300 could range between 275 to 325. What is required to understand, whether the direction of the estimations are in the same, whether the vote share estimates are telling you the story. So the story, the real juice, is in vote share estimates of all these serious agencies, 3 or 4, that the NDA vote share is crossing 40. They are somewhere between 40 to 43. That the UPA share is still below 30, somewhere between 27 to 30. And there is minimum 10 percent point gap between NDA and the UPA vote share. This is very critical to understand, because in 2004, I have been since morning, many people have been asking me.
Tandon sahab, kai saalon se hum dekhte aaye hain, halanki romance bada aata hai jab aap exit polls ko television pe aate dekhte hain, kafi log utsahit bhi hote hain aur baithe rehte hain TV ke samne, lekin saath hi saath ek aalochna bhi hone shuru ho jati hai ki kai purane aankde nikal ke dekhe jate hain aur log kehte hain ki ye to galat hua hamesha exit poll. Aapka apna anubhav itna lamba hai, isse upar kuch prakash dalein.
शुरू में मैं एक बात कहना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि यशवंत भाई भी उस पर थोड़ी रोशनी डालें, कि जो एग्जिट पोल होते हैं, ये मान लीजिए कि वो लोग अपनी बात कहते हैं वोट डालने के बाद. ये एग्जिट पोल कहीं ना कहीं जो नतीजे आते हैं उसके आगे पीछे ही रहते हैं, तो फिर विपक्ष जो है वो ईवीएम पर दोष कैसे डालता. कल के सारे एग्जिट पोल देखे तो बाय एंड लार्ज सभी एग्जिट पोल एक चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, एनडीए को बहुमत मिलेगा. लेकिन जो ही नतीजे आएंगे और बहुमत मिलेगा तो बोलेंगे ईवीएम में गड़बड़ी हुई. मान लीजिए आपने कहा हम पर विश्वास नहीं करते एग्जिट पोल, लेकिन रिजल्ट आने पर जब एग्जिट पोल उसके आसपास होते हैं, जैसे हम 2014 की जब बात करें तो लगभग सभी ने ये बहुमत के आसपास का आंकड़ा दिया था, लेकिन आंकड़ा बहुमत से थोड़ा और ज्यादा निकला, तो इसमें भी ईवीएम पर दोष डाला गया. तो एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं किया, नतीजे एग्जिट पोल के आसपास आए, फिर आप कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी हुई. तो इसका मतलब या तो एग्जिट पोल करने वालों में भी गड़बड़ी है. ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है कि ये एग्जिट पोल इस तरह से मैनेज करवा लिए गए हैं ताकि ईवीएम में गड़बड़ी को जस्टिफाई किया जा सके. तो ये जो दोष लगता है ईवीएम पर तो बाद में लगता है, पहले आप पर लगता है यशवंत जी कि आप जो लोग हैं क्या आप कोई मिलीभगत के साथ काम करते हैं कि आप सब लोग मिलकर एक जैसे आंकड़े दे रहे हैं कि एनडीए को बहुमत आ रहा है और बाद में विपक्ष कहेगा नहीं ईवीएम में गड़बड़ हुई। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कहां खड़े हैं।
बहुत ही हास्यास्पद हो जाती है ये स्थिति है, क्योंकि रिसर्च के डेटा में डेटा जो आता है वो कहता है ममता दी के लिए जब पिछले वर्षो में जितनी बार जीत की भविष्यवाणियां आई उतनी बार तो सर्वे एजेंसी सभी लोग थे बहुत अच्छे थे। जब पिछले दो विधानसभा चुनाव में उनकी जीत की भविष्यवाणियां की, इनफैक्ट जब पहली बार वो जीती उस समय तो जो आज वो भाषा बोल रही है वो लेफ्ट फ्रंट बोल रहा था क्योंकि हम उन्हें हारा हुआ बता रहे थे। पिछली बार जब पश्चिम बंगाल में अभी दो साल पहले जब उनकी जीत की भविष्यवाणी की तो वो लेफ्ट फ्रंट ये भाषा बोल रहा था। जो हारता है उसके पास में दो ही सबसे ज्यादा मूक शिकार होते हैं, एक पोस्टर कि इनको मारो क्योंकि अपने बेचारे पत्रकारों की तरह से बहुत ज्यादा, मैं अकेला शायद एक अपवाद हूं कि पत्रकार और पोलिंग का एक संवेद वो हूं तो मैं यहां बैठ के बात कर रहा हूं, लेकिन सामान्यतः पोलिंग एजेंसीज के जो काम करने वाले लोग होते हैं वो बहुत पत्रकारिता दुनिया से दूर होते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि अपने आप को हम कैसे डिफेंड करें इस तरह के राजनीतिक बयानबाजी से। दूसरी चीज ईवीएम, अरे भाई ईवीएम के ऊपर आरोप लगा करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि आप जो आज मुख्यमंत्री बनी बैठी है या इस दिल्ली शहर के जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं वो ईवीएम के बगैर जीत गए? दिल्ली शहर में जब 67 सीटें उनको मिली 70 में से वो ईवीएम के मिली कि जिंद से आके दे गए? या फिर पश्चिम बंगाल में जिस तरह की ऐतिहासिक जीत एक बार नहीं दो बार ममता दीदी को मिली वो कहां से आ गई? जब ये इस तरीके की बातें करते हैं तो समझ में नहीं आता कि हंसू की रो। देखिए तनंजय जी, इतने वर्षों से आप वरिष्ठ हैं, आप जानते हैं, अपने स्थिति में भी नहीं नहीं करते हुए भी 40 से ज्यादा देशों के इलेक्शंस को मैं स्टडी कर चुका हूं, जाके देख चुका हूं। जितनी बार मैं भारत से बाहर जाता हूं यकीन मानिए कोई दुनिया का चुनाव देख के आता हूं, मैं अमेरिका में अब काम करता हूं वहां के जितनी बार भी मैं जाता हूं मुझे केवल और केवल गर्व होता है अपने देश के लोकतंत्र पर, इलेक्शन कमीशन पर, लोकतांत्रिक प्रणाली पर, चुनाव की मशीनरी पर, कि इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में जिस एफिशिएंसी के साथ में हमारे यहाँ के चुनाव कंडक्ट होते हैं, हमारे यहाँ के चुनाव संपन्न होते हैं, दुनिया में कहीं नहीं होते हैं। शोकी मैं क्या बताऊं, आप मुझसे ज्यादा पूरी दुनिया घूमे हैं, जितना आप भारत के बाहर जाइए केवल और केवल भारतीय लोकतंत्र पर आपको और ज्यादा प्रगाढ़ विश्वास और श्रद्धा के बगैर आप वापस नहीं आ सकते अगर दुनिया के बाकी लोकतांत्रिक जगहों के आप चुनाव देखेंगे। तो इन चुनावों का अपना गरिमा है केवल यह है कि ये सारा रोना धोना मुझे लगता है केवल जो हारता है ये उसका फिक्स रोना धोना है और ये हर कैंप में से होता है। मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि ईवीएम पे अवकाश होगी मुझे अच्छे से याद है 2009 में जब बीजेपी हारी और मैंने तब भी पुरजोर विरोध किया था, तब भी मैंने इस पर आर्टिकल लिखे थे, टीवी पर आते बोला कि ये क्या बात है, आप चुनाव हारते हैं तो खिसियाहट वहां निकालते, कम से कम लोकतंत्र के साथ में ऐसा मजाक मत कीजिए, चुनाव जीतिए तो गरिमा के साथ स्वीकार कीजिए, चुनाव हारिए तो उसे गरिमा के साथ स्वीकार।
अशोक जी, वन थिंग दैट ऑफ कोर्स टॉक कम्स आउट ऑफ व्हाट मिस्टर देशमुख हैज टोल्ड अस एंड टू द लिसनर्स, वन ऑफ द इश्यूज दैट वी ऑलवेज लुक एट वेदर बी द एग्जिट पोल्स और प्री पोल सर्वेज, एंड इंडिया इज अ हेटरोजीनियस सोसाइटी एंड दैट्स समथिंग विच इज एज मिस्टर देशमुख वुड बेयर इट आउट, इट्स डिफरेंट इन अमेरिका, इट्स अ मोर होमोजीनियस सोसाइटी और प्रॉब्ली इन द वेस्टर्न डेमोक्रेसीज वेयर द साइज एंड पीपल इटसेल्फ आर नंबर्स, बट हियर country of say 900 crore who are voters, it's always people can question that have we got it right.
The thing is, as Yashwanji was saying, it's the credibility also, it's a question of their credibility. If they were totally off the mark, then why would somebody engage them in the next election? But we see all of them are being engaged simultaneously by so many channels and so many agencies are coming up, so that means those who engage them, they put a lot of money into it and their credibility is also at stake. So therefore, I think we have no reason to believe they are either partisan, they fudge the statistics just to, you know, showcase their ability. But if it was the case, even if they have gone wrong, for instance, in 2004, most of the pollsters had gone wrong, exit poll. But still, in the next election, the same agencies were engaged by so many people. We are now a mature democracy, and therefore, we should believe that these are scientific ways of doing it. They may go wrong here and there, 10%, that they always leave the margin. But I think when we talk of the exit poll, largely it is some kind of entertainment period for the 2 years till we get the result. So people also take the exit poll with a pinch of salt. These are not results, but they keep people engaged for days or so. But people forget the exit poll. Only remember exit poll when the next election comes. People always remember the actual results.
In fact, to be fair, I think every anchor after anchor kept on telling the viewers that these are exit polls, the real results will come on 23rd, exactly. And Of course, Ms. Deshmukh, I would like to look at, since cephalology is as an art becoming a science, it requires a lot more thing. And in a country like ours, as a questioner and director to Ashokji also to understand, a heterogeneous society like ours, sample size itself is an issue for us.
I can explain in a very quick manner to you. You see, when I am doing a sampling in U.S. elections, and when we predicted that Trump is coming as a president, and we got it right over there, you know what is the sample size of entire U.S. was? 1,200. That's it. Why? Because it's a homogeneous society. One may ask, for a country of 1.3 billion, how big a sample size we need? Actually, the answer is 1,200. That's it. You need a perfect randomized sample of just 1,200 in people to have any estimate. Like estimate how many people like red kurta versus a green kurta. If you want to have an estimate of that, 1,200 people are good enough. But suppose this country like 60% of Indians like red kurta over green kurta. I am saying that. Then can you tell me what about Uttar Pradesh? No, I can't. Because that sample is not enough for estimation of Uttar Pradesh. To have an estimation of Uttar Pradesh, I need to sample 1,200 in Uttar Pradesh. Now, if you will ask me what's the people in Lucknow want, I can't tell. Because for that, I need to do 1,200 in Lucknow. If in Lucknow you will ask me Lucknow East, I have to do 1,200 in Lucknow East. So, smaller the universe, larger the sample size. Now imagine, in US, because just like Tananji said, and you also mentioned, it's a homogeneous society. There are not many variables in the population. Basically, two languages, English and the second is Spanish. I mean, these are primarily two languages. Then you have African Americans, you have got whites, and within the whites you also have a Hispanic, I mean, population, which is the new largest minority over there. So basically very minuscule 1% rest of the world, including the Asian 1 or 2%. What we are talking about, only about 5 or 6 demographic variables. In India, you know the caste and the religion composition. In Uttar Pradesh or any seat for that matter, each and every seat has a different caste and religion combination. Every seat has a different profile. Every state, forget about every state. This is why we have 543 individual elections. It's not one country, there is not a homogeneous big election over there. If you want to do a really correct estimate, you have to actually poll more than 1,000 sample in each and every of those Lok Sabha segments. Imagine like our exit poll which we went this time. We tried to do that. The sample size became more than 500,000. But channels were willing to support for that kind of accuracy. Even after that, we are saying there is still a margin of error of plus minus 3% on the vote share estimate. So imagine the kind of work and hard work that goes through. India, when we do a routine survey, like every week we do our trackers poll in India for the last 10 years, every week after week. Whenever we do it in 11 languages. Every week we are interviewing 1,500 people for a popularity and other approval ratings and other things. My friends in Europe, they always tell me, every week actually, technically speaking, you are doing something like a Eurobarometer. India is that divergent. India is so different from rest of the world. The only other country which I find could be near about comparable to that kind of demographics is South Africa. They also, they have got too many tribes and languages and those kind of issues. So, in a nutshell, actually the sampling point, if you want to do accuracy, you need to have a sampling points much more and much bigger sample. One thing which I want to say, that is in Hindi. Ghoda ghas se yari karega to khayega kya? Jis aur Ashok ji ne ishara kiya. To statistical galtiyan hoti hai, estimation mein galtiyan hoti hai, lekin mote taur par agar 90% se zyada hamare aankde har chunav ke ek direction mein sahi hum pakadte hain, to mujhe lagta hai ki jo gambhir institutional kaam karne wali agencies hai badi, unko bahut zyada equity stake pe hoti hai. Unke naam se zyada, apna naam credibility samne laga dene se zyada in numbers pe 72 ghante mein to natije hi aa jane. Aaj diya aur parso galat natijon mein aa gaya, to humko to wahi lathe padne hai sari janta se.
Abhi jaise Ashwin ji keh rahe the, आपने भी पहले जिक्र किया क्रेडिबिलिटी की बात और साथ में निष्पक्षता की बात, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल अपने नाम और उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहेगा. जैसे यशवंत जी ने कहा कि हो सकता है गलती हो जाती है, क्योंकि आंकड़े जोड़ने में एक आधा इधर उधर और उसमें मार्जिन ऑफ एरर भी जोड़ा गया. लेकिन कल का बहस में और आज कई सारे अखबारों में एक जिक्र किया गया ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में करीब 6 एग्जिट पोल या 6 प्री पोल सर्वे वगैरह, उन्होंने कहा कि लेबर पार्टी मार्जिन ज्यादा है और वो शायद आ सकती है सत्ता में, लेकिन हुआ विपरीत. और साथ ही साथ लोगों ने, जैसे यशवंत जी की बात भी कही, यूएस का भी गिनवाया या किसी और की, जहां एग्जिट पोल बिल्कुल ही विपरीत हुआ और परिणाम कुछ और निकले. तो ऐसे में क्या तरीका निकल सकता है?
देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया में एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं, अमेरिका में साबित हुए ट्रंप के इलेक्शन में, मैंने ब्रिटेन में देखा एग्जिट पोल गलत जाते हुए,
ब्रेग्जिट में खासकर देखा,
हाँ, ब्रेग्जिट में हमने देखा, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि एग्जिट पोल करने बंद कर दिए जाए। देखिए, सवाल ये है कि चुनाव परिणाम से पहले लोग कुछ न कुछ जानना चाहते हैं,
जिज्ञासा तो है,
ज्ञान किस तरफ है, कहाँ जा रहा है, और उसके लिए ये जो एक्सरसाइज करते हैं एग्जिट पोल वाले, वो एक्सरसाइज जो है लोगों को 72 घंटे तक एंगेज रखती है, खुशफहमी में रखती है। लेकिन एक बात सच है, कम से कम हम अपने देश के बारे में करें तो मेरे पास 1998 से लेकर अब तक के आंकड़े हैं, सारे एग्जिट पोल जितनी भी कंपनियों के पोल ऑफ पोल निकाले, वो कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं थे। जैसे कल के एग्जिट पोल में एक बात तो लग रही है कि रुझान किस तरफ है, तो एनडीए का एक बहुमत की तरफ आंकड़ा जाता हुआ दिख रहा है। अगर इतना भी हो जाता है, जैसे मान लीजिए बहुमत मिलता है एनडीए को, फिर चाहे वो 273 से मिले या 280 से मिले, बाकी चीजें एकेडमिक हैं, लेकिन अगर ये हो कि साहब आपने तो बहुमत का आंकड़ा पार किया और यहां उल्टा आंकड़ा आ रहा है यूपीए के फेवर में, अगर इतना अंतर कभी आता है तो सचमुच में लोगों का विश्वास समाप्त हो जाएगा और ये इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। लेकिन अभी तक इतना नहीं हुआ। अगर हम 2014 की भी बात करें, देखिए 2014 में सिवाय एक टाइम्स नाउ ओआरजी ने जो बहुमत से कम का आंकड़ा दिया था, बाकी सब ने बहुमत का आंकड़ा दिया, और किसी ने तो 340 भी दिया और निकला 336। तो इसका मतलब ये है कि सभी जो करते हैं एग्जिट पोल, वो अगर एक ही तरफ रुझान दिखा रहे हैं तो लोगों को लगता है, जैसे शेयर मार्केट आज क्यों ऊपर उठ गई, इसलिए उनको लगा कि अगर सभी एग्जिट पोल के जितने भी एजेंसी हैं सब एनडीए को एक बहुमत की तरफ दिखा रही हैं, तो इसका मतलब कम से कम सरकार तो नरेंद्र मोदी की बनी रही।
मैं केवल श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में 51 और 49 का फर्क था पिछली बार भी और इस बार भी, तो आप समझ सकते हैं कि जब हार जीत का अंतर 1% के अंतर पे अटिका हुआ हो, वहां पे एस्टिमेशन में जबकि स्टैटिस्टिक्स में 3% के अंदर मार्जिन आ सकता है एरर का, वहां पे इतना कठिन था और उसमें अगर गलत हुए तो कोई बात नहीं। श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि आप एग्जिट पोल में क्या देखिए। पहली बात, किसी भी एग्जिट पोल में अगर वोट शेयर नहीं दिया है तो उसको रद्दी की टोकरी में डाल दीजिए, क्योंकि एग्जिट पोल का काम या सर्वे का काम वोट शेयर के एस्टिमेट पे आके रुक जाता है। वोट शेयर को आप सीट में कन्वर्ट करते हैं, ये आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने वोट ही नहीं निकाले हैं तो सीट कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिए केवल और केवल वोट शेयर पे। जैसा मैंने पहले बोला, वोट शेयर में अगर गैप 10% का आ रहा है बड़ी एजेंसीज का यूपी और एनडीए के बीच में, तो 30% का मार्जिन ऑफ एरर हटा भी दीजिए तब भी वो लीड में एनडीए ही दिखाई देती है। इसलिए ध्यान वोट शेयर पे दीजिए और ये देखिए कि लीड में किस तरफ ज्यादातर लोग दिखा रहे हैं, नतीजे उसी डायरेक्शन में ही आने की संभावना है। अशोक जी ने बोला कि बिल्कुल उलट आ जाए तो वो एक गंभीर मसला है, वो नहीं होना चाहिए।
अश्विन जी, व्हाट यू टॉक्ड अबाउट इज वेरी क्रूशियल। द पॉइंट इज, यू मेंशन अबाउट वोट शेयर्स एंड यू मेंशन अबाउट बट दिस टेंडेंसी ऑफ एक्सट्रापोलेटिंग इनटू सीट्स, इफ यू कैन हेल्प अस विद द बेनिफिट ऑफ लिसनर्स टू दैट, रिक्वायर्स अ डिफरेंट स्किल सेट्स एंड डेटा सेट्स और विद द सेम वोट शेयर एक्सट्रापोलेशन।
If the same vote share is given to 10 different sophologists, everybody is going to come up with different kind of seat share projections. Obviously, they will pick up the winner right with the same vote
share. The direction would be correct.
The direction would be right. But from a simple majority to 3/4 majority, depending on the kind of algorithm or formula they are using to convert the vote into seats, that is not part of survey science. Survey science stops at the probability and the estimation of the vote share within a plus minus 3% of variation. This is where the survey science stops. After that, same vote share might be giving 10 different kind of projection with 10 different kind of sophologists or even journalists for that matter. So, let's be very clear. Please do not look into the seat share estimates. They are estimates, but look into which direction they are aiming at. And very closely look out for the vote share. And I would be very happy if the audience of All India Radio and those who are listening this program, they insist to the news organization that please do not just give the seat share estimate. Every person in this country, every audience of All India Radio is a sophologist on his or her own. If we give you the vote share, you can very well imagine on your own which party is likely to get what kind of seats. You don't need people to tell you how many seats a person party likely to win. You are good enough to understand. Insist on the vote share. Insist the news channels. Insist the newspapers. Don't tell me the seats. Give us the vote share. We will know what we need.
But can we not find a way out that in future Babaji should give only the vote percentage.
I just want to add, in fact, I want you to answer this, Tandonji. The thing is, the viewer or the listener at any point of time would eventually ask, Arey, seat to batao, kaun kitni seat jeet raha hai? So this, the expectation of the listener, expectation of the reader or expectation of the viewer is, vote share is fine, but how does it convert into seats? I think that's where we need to look at it.
Can't we leave it till to viewers and listeners that this is the vote percentage share, wait for the results to come in terms
of seats? I always try to maintain that on my show when I am appearing on the channel. I always start with the vote share. These are the vote share estimate. Now when we try to convert these into seats, as per our conservative formula, it gets into these kind of seat share. But these shares could go up or down depending on different formulas. Generally what happens as far as our projection model is concerned, our model is fine-tuned to pick up a conservative estimate. We never predict a sweep. We never go hyper on any one party regardless of what. But when we get a much larger gap of the vote share, we always maintain that we are predicting a simple majority. But due to this high margin of votes, it is very likely that these seats might even go one side, and this could easily convert in simple majority can easily go for a two-third. A two-third majority could easily go for a three-fourth. That is very much likely.
Tanda ji, do cheez hai, halanki pure chunao ke upar, jaise ki hum log baat bhi kar rahe hain, vote share ke upar, Ishwan ji ne bataya. तीन चार राज्य हैं जहां कल जो चुनाव से पहले जो एग्जिट पोल आए जिसपे थोड़ा लोगों को लग रहा था, उत्तर प्रदेश को खासकर लेकर, क्योंकि तमाम सारी रिपोर्ट निकली थी गठबंधन के ऊपर कि वो गठबंधन एक चैलेंज पेश कर रहा है, लेकिन सिवाय एक या दो किसी ने गठबंधन को ज्यादा सीट नहीं दी, अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। थोड़ा इस पे आपसे टिप्पणी चाहूंगा, यशवंत जी से भी पूछूंगा।
देखिए, जब ये गठबंधन हुआ था सपा बसपा का, तो ये एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगर एक दूसरे का वोट आपस में कन्वर्ट होता है, तो दोनों का अगर वोट शेयर मिला दिया जाए पिछले चुनाव में, तो ये विनिंग कॉम्बिनेशन दिखता है कागज पर। लेकिन कितना वोट एक्चुअल में ट्रांसफर होता है या नहीं होता, अब जैसे उत्तर प्रदेश में एक नारा चला था कि 37 पे लाल बाकी पे शिवपाल, यानी 37 पे लाल का मतलब ये है कि जो अखिलेश है वो लाल है मुलायम सिंह यादव का, तो 37 सीटें उसको मिली है, इस पर तो लाल को दीजिए बाकी शिवपाल को दीजिए, यानी यादव वोट जो है उसको मायावती को नहीं देना। मान लीजिए कल को जिस तरह के रुझान दिखाई दिए हैं एग्जिट पोल में, और सचमुच में ही ये अलायंस को गठबंधन को सीटें नहीं मिलती हैं और मायावती की सीटें अखिलेश से भी कम रह जाती हैं, मायावती की आपने यादव वोट ट्रांसफर ही नहीं किया और ये अलायंस टूट जाएगा और आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में कागज पर जो अलायंस बनता है जिसमें माना जाता है कि वोट शेयर ट्रांसफर होगा और एक्चुअली में नहीं होता, किसी भी कारण से नहीं होता, तो आपस में मनमुटाव होता है, झगड़े होते हैं। यही कांग्रेस और अखिलेश में उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव में हो गया और गठबंधन टूट गया। अब एक नया गठबंधन किया है, जातिगत समीकरण है जिसका नाम है MYD, यानी मुस्लिम यादव और दलित। अब ये तीनों का अगर वोट शेयर मिलाकर देखें तो ये तो 60 सीट जीतनी चाहिए, लेकिन अगर रिजल्ट उल्टे आते हैं तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई। या तो मोदी ने ये जो जातिवादी जितने भी ये हैं इसको तोड़ दिया, और जैसा 2014 में भी हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने जातिगत समीकरण उत्तर प्रदेश में बनते थे सबको तोड़ दिया और मायावती को एक भी सीट नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी और उसके अलावा 73 सीटें ले गए। तो अगर इस बार भी मान लो बीजेपी 60 सीट से ऊपर लेती है, इसका मतलब ये जो जातिगत समीकरण है ये सचमुच में जमीन पर काम नहीं करते। तो ऐसे में हम ये एग्जिट पोल वालों को तो ब्लेम नहीं कर सकते।
आई एम नॉट ब्लेमिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इशू।
आपने जो सवाल पूछा उसका एक जवाब छोटा सा ये भी है कि कल जितने एग्जिट पोल आए उसमें सारे राज्यों में सारे एग्जिट पोल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, इंक्लूडिंग द स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल। द गेन ऑफ बीजेपी ऑन द कंजर्वेटिव साइड, सम पीपल हैव सेड 8-9 सीट, सम पीपल हैव सेड 20 सीट, बट बीजेपी इज गेनिंग। दैट इज समथिंग विच एवरीबडी हैज सेड। उत्तर प्रदेश इज द ओनली स्टेट इन इंडिया, ओनली स्टेट वेयर देयर हैव बीन ए कॉन्फ्लिक्ट इन एग्जिट पोल दैट ओके हु इज अहेड। रीजन बीइंग, इट इज द ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर द गैप ऑफ द वोट शेयर बिटवीन द टू फ्रंट्स इज सो लेस। इन ऑल द एग्जिट पोल्स the Mahagathbandhan or the BJP vote share is ranging between 42-45%. Basically, within 2% of the gap, both some places they have got 1% MGB ahead, some places they have 1-2% BJP ahead. So, which is very much within the statistical margin of error. This is precisely, I am so glad you picked up this point. This is precisely what I wanted to say. When you look at the vote share, then only you know how close it is. And if it is close, they are bound to have problems in the estimation. But when the margins are 5%, 8%, 10% and for that matter even like 20%, as in the case of Gujarat and Rajasthan, then obviously it is not going to have any conflict, at least in the direction. So in Rajasthan, the most conservative estimate went up with the 20 and 5 scenario and 5 or 6 seats of the Congress, 2 or 0 seats for Congress. Now with the 20% of gap, ideally both are in, but everybody is saying that BJP is sweeping Rajasthan. Only a state is Uttar Pradesh where the contest is so close on the state level that people are facing problem. The only way to tell UP better is to actually do a massive poll in each and every seat of Uttar Pradesh. Then you have a seat-wise estimation and probably think of, we do that. But even then we say that it's very difficult. So pardon us for the closeness of fight in Uttar Pradesh and the differences in that one. But overall speaking, I think the direction of the exit polls have been very clear, and I would be extremely surprised if something defies and comes against the direction of the exit.
Tanil sir, jo Yashwant ji ne bataya Uttar Pradesh ke bare mein, us sandarbh mein samjhaya bhi, others jo ek bada aankda nikal ke aata hai, takriban Congress ka kuch aaya, others ka kuch hai, sab ye hai, agar aankde pe na jaate the, others to itna bada khema hai apne aap mein, kuch ho sakta hai Bharatiya Janata Party ke saath bhi hai ya kuch nirdaliy hai, to uska kaise dekha jaye?
नहीं, आप वोट प्रतिशत की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में,
पूरे भारत का नक्शा देखें तो अदर्स की भी सीटें निकलती हैं जो कि लोग उसका अपना अंदाजा लगाते हैं कि ये कहां जाएंगे, कैसे होगा, ये अपने में अलग एक चीज है।
अदर्स में एक तो क्षेत्रीय दल भी होते हैं, अब उनको भी हम
निर्दलीय हुए,
हाँ निर्दलीय बहुत होते हैं और कई ऐसे निर्दलीय भी होते हैं जो बहुत शक्तिशाली प्रभावी होते हैं, जैसे हमने पीछे देखा राजस्थान में कितने निर्दलीय जीत गए, तो कोई पोलस्टर उनको गिनता भी नहीं है, तो ऐसे में। लेकिन एक चीज जो मैंने अभी इसको समझा यशवंत जी से, कि अगर उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत का अंतर बहुत कम है तो क्या सीटों में ये किसी भी तरह से जा सकता है, क्योंकि अगर 6 में से 4 पोलस्टर तो भारतीय जनता पार्टी को आगे कह रहे हैं और 2 गठबंधन को आगे कह रहे हैं, तो यहां कहीं उलटफेर हो सकता है सीटों में, क्योंकि यही एक प्रदेश है जहां सीटों के उलटफेर से बहुमत का आंकड़े में भी अंतर आ सकता है।
बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए ज्यादातर कंजर्वेटिव एस्टिमेट बीच की तरफ से आते हैं कि मीडियन ले लेते हैं और उसमें दिखाई देता है कांटे की टक्कर है, यानी 35 से 40 की सीट की रेंज के बीच में दोनों के ही आंकड़ों को आपको दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की स्थिति 2 सीट पे ही सीमित है, इस पे किसी को भी कोई मतभेद नहीं है किसी पोलिंग कंपनी का, लेकिन यस उत्तर प्रदेश इज द वन स्टेट वेयर 1 point or 2 कैन रिजल्ट इन अ स्वीप टू एनी वन ऑफ
देम। व्हाट अ सप्लीमेंटरी क्वेश्चन, लास्ट टाइम बहुजन समाज पार्टी गॉट अ फेयरली से 29% ऑफ सीट्स, परसेंटेज ऑफ वोट्स,
बट 20% वोट्स एंड जीरो सीट्स।
यू सी दैट्स हाउ डज वन दैट एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ यू नो,
बिकॉज इफ देयर वोट शेयर इज क्वाइट कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल द सीट्स, सो यू आर विनिंग 20% इन अ ट्राइंगुलर कंटेस्ट, अनलेस यू आर क्रॉसिंग अ थ्रेशोल्ड ऑफ 30%, यू आर अनलाइकली टू विन सीट्स। This is why, in other words, hypothetically speaking, all of everyone, just think for a second, there was no Mahagathbandhan in UP. Think of it. We wouldn't have been talking about these elections anymore. Because we would have thought,
it's over.
Without a Gathbandhan, it would have been like Delhi, where the BJP is approximately 40% and Congress and Aam Aadmi Party both at approximately 20% each. So obviously, the 40% will sweep because the position is split. Same would have been in Mahagathbandhan in UP. SP Vishnu would have split and gone alone. BJP would have got 70 seat plus again this time, but the moment they came together, do or do wahan pe 11 ho jata hai milke.
One state I would like to go is Tamil Nadu, because the Tamil Nadu also offers a very interesting matrix,
yeah,
in terms of combination, something quite similar to UP but in a different. So would you quickly?
I would say one thing, that Tamil Nadu is the first election after Jayalalitaji's death, and this is going to make a lot of indications for the future politics of Tamil Nadu. We'll know on 23rd. But just before this Tamil Nadu, and there is one more question that you asked previously, that about the others. There are some inherent problems in each and every state which would decide where the others will go. For example, wherever DMK will go, ADMK will not go because they have a problem. Barring the Communists and the Congress going together against the BJP, there is no other conflict which are shared so well. Similarly, there is a common animosity as far as KCR and YSR is concerned, and vis-a-vis TDP. So wherever Chandrababu Naidu goes, neither Jagan Mohan Reddy would go there, nor KCR would go there. So it all depends on those dynamics. Now that Chandrababu Naidu is actually campaigning so hard with the opposition alliances, all of a sudden you will find KCR and Jagan Mohan Reddy have almost dropped the opposition unity in that way. So what you can expect, there is three people that you must keep in mind: Biju Janata Dal of Odisha, YSR Congress of Andhra, and KCR, basically Telangana Rashtra Samiti. These three gentlemen, between them, the exit polls are showing they would be having about 40-odd seats between them. And this bloc, come what may, is unlikely to go with the Congress. They are likely to go with the BJP. If they need it, they don't need it, that's a different thing. But in the parliament itself, you can count this just the way whatever the left front gets in the parliament, you can count them by default in the favor of Congress. Congress and left are directly in pitch in Kerala. No matter, Kerala has 20 seats. No matter who wins there, they are going to support Congress, be it left, be it Congress. Similarly, in these three states, these three players, no matter who wins how many seats, in the parliament, they are likely to be standing along with the BJP.
Sir, of course, we all know that I mentioned this right at the beginning, that exit polls offer enough fodder for the political followers and everybody to talk about things. I'm sure in the elections to come, would you quickly round say that you mentioned that exit polls should offer an insight or a peep into which way the polls are, wind is blowing?
I think, as we have discussed, if the pollsters stick only to the vote share percentage and leave the speculation in terms of seat till the results are out, I think there will be less criticism. Because people will still hope that, well, our vote share can convert into seats. But analyzing or converting it into seats has a margin of error, which even Yashwant has admitted. Therefore, there is speculation. And if it goes one way, then obviously the loser side will start raising questions. And the first question they raise is only about the EVM, not about the pollster. So therefore, if all the exit polls are indicating in one particular direction, and the margin of error is, say, 2%, and in terms of seat also is a question of 10-20 per seat, then I feel nobody should raise a finger at EVM. Because if exit polls are giving an indication in particular direction, so there can't be any fault with the EVM. But still, the opposition is ready with EVM, and I think the first thing they lose, they will go and sit at the dharna outside election commission and say, we don't trust EVM.
Well, one thing is clear, sir, ke aane wale chunav mein jab 23 ko natije aayenge, log jaise aapne kaha exit poll ke samne dekh ke, lekin jo sachai hai wo samne aayegi. Hamesha ki tarah agar aap dekhe ki in India sophology itself is not less than 3 decades old. I think every election we hope that we improve this science. Thank you very much for being with us.
You were listening to a discussion on post-poll political development. The participants were Yashwant Deshmukh, sophologist, and Ashok Tandon, political analyst. K.V. Prasad, journalist, initiated the discussion. This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. You can also listen to this program on our website, newsonair.nic.in. You may email your opinion about this program at airnsdtalks@gmail.com.